my idea fully in English, so I am telling Hindi and he will translate.
सवेरे हम लोगों ने गुरुजी के संबंध में हम लोगों ने कुछ बतलाया. अभी समय कम है, टाइम इज शॉर्ट, समय कम है. गुरुजी का अभी अर्चन हो जा रहा है और अभी ठाकुर जी को भी भोग लगेगा, इसे देरी न हो जाए, इसलिए मैं संक्षेप में कुछ कहूंगा. आई विल टेल वेरी शॉर्टली बिकॉज टाइम नॉट सो मच टाइम. अभी गुरुजी के चरण में हम लोग पुष्पांजलि भी देंगे. तो मैंने सवेरे उनके जीवन चरित्र के संबंध में मैंने कुछ कहा, किंतु मैं अभी विशेष रूप में नहीं जा करके उन्होंने अपने गुरु पादपद में की कैसी सेवा की, मनोभीष्ट को पूर्ण किया, उन्होंने अपने गुरु परंपरा रूपी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की कौन कौन सी सेवाएं की, हाउ ही सर्व्ड हिज दिस डिसिप्लिन आचार्य परंपरा, हाउ ही सर्व्ड हिज गुरुदेव. आई वांट टू से समथिंग अबाउट दैट. आई एम टेलिंग, मैं उसी के संबंध में कुछ बतलाने जा रहा हूं. यह हमारे गुरु जी के ये परम पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के बहुत से शिष्यों में एक ये प्रधान थे. इन्होंने शारीरिक मानसिक समस्त रूपों में अपने गुरुजी के मनोभीष्ट को उन्होंने पूर्ण किया. विशेष करके उनके मनोभीष्ट पूर्ण को किया, कैसे किया इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं. जब किसी ने भी हमारे परम पूज्य हमारे परमाराध्य परम गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और रूपानुग वैष्णव के ऊपर में कोई भी कटाक्षपात किया तो उनकी जीभ को काट करके अलग कर दिया, उनकी बोलती को बंद कर दिया. इफ एनी वन टोल्ड एनीथिंग अगेंस्ट अवर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और अबाउट अगेंस्ट श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अगेंस्ट भक्ति अगेंस्ट कृष्णा, ही एट वंस टूक हिज सोर्ड एंड कट ऑफ देयर टंग एंड स्टॉप देम टू डू सो. आई एम टेलिंग अबाउट दिस थिंग. हम लोग के गुरु पाद पद्म जी बहुत ही बागमी थे, बड़े कुशल वक्ता थे. मितंच सारंच बाग्मिता, थोड़े ही शब्दों में अपने सारे विचारों को प्रकाश कर सकते थे. इन फ्यू वर्ड्स सेलेक्टेड वर्ड्स ही यूज्ड टू एक्सप्रेस हिज होल थॉट्स. इसलिए बड़े भारी दार्शनिक थे. ही वॉज वेरी ग्रेट फिलोसफर. प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी हैज गिवन हिम ऑल द बुक्स ही कलेक्टेड अबाउट ब्रह्मसूत्र वेदांत वेदांत एंड ऑल द बुक्स ही गिव टू अवर गुरुदेव. हमारे गुरुजी को उन्होंने सारे वेदांत की पुस्तकों को उन्होंने दिया कि तुम बहुत बड़े भारी वेदांत विद हो, इसलिए तुम्हारे अतिरिक्त और कौन इसको पढ़ सकेगा अध्ययन करेगा, इसलिए तुमको मैं दे रहा हूं. इन्होंने सारी पुस्तकों को श्रील प्रभुपाद गेव हिज ऑल द बुक्स रिगार्डिंग फिलोसफी वेदांत ही गेव इट टू अवर गुरुदेव एंड ही स्टडीड. वी डोंट नो व्हेन ही यूज्ड टू स्टडी. हम लोग नहीं कह सकते थे वो कब पढ़ते थे कब क्या करते थे. हम लोग तो उनको केवल ऐसे बैठे हुए देखा करते थे। सुनते हैं कि रेलगाड़ी में या कहीं जब जाते थे तो वहीं पढ़ने नहीं कैसे पढ़ते थे। ऐसी पुस्तक यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं है जो हमारे संप्रदाय में और जगह है। यहाँ पर सारी पुस्तकें हैं किंतु उनमें से वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब में लिखा हुआ रेड लाल काली से उन्होंने लिख रखा है। हमने उज्ज्वलिन मणि देखा भक्ति स्वामी सिंधु और जितने भी हमारे संप्रदाय के ग्रंथ हैं। और की तो मैं बात क्या कहूं, कृष्णदास कबीराज गोस्वामी की जो पुस्तकें जो है वो सबको उन्होंने देखा है, उसमें लाल मार्क करके रखा है। बड़े अच्छे सुंदर लेखक भी थे, जैसे उनकी कलम चलती थी वैसे उनका मुख भी चलता था। कोई भी व्यक्ति उनके उनको जबकि उनसे तर्क वितर्क करने के लिए आता तो अपनी पैनी बोली से पैनी कलम से ऐसा उसे निरुत्तर कर देते थे जो एकदम चुपचाप रह जाता था। एक समय की बात है, मैं गया था उनके साथ प्रचार में मेदिनीपुर में। हमारे साथ में पूज्यपाद बामन महाराज जी और परम पूज्यपाद दीन बंधु बाबा जी थे। हम लोग तीन आदमी थे और वहां के कुछ लोग थे। एक समय कोई आदमी वहां पर आए, रिटायर्ड वो जज थे। आकर के कुछ तर्क विचार हुआ, मैं अधिक दूर विस्तार पूर्वक नहीं कहूंगा, उसका जो सार है वही बतला रहा हूं। उन्होंने आकर के ब्रह्म तत्व पर विचार करने लगे। उन्होंने कहा जो ब्रह्म आनंदमय है। उन्होंने गुरुजी ने उत्तर दिया, हमारा वैदिक ब्रह्मवाद और आधुनिक शंकर के द्वारा प्रचारित अद्वैतवाद एक नहीं है, मायावाद एक नहीं है। वेदांत में अथवा हमारे वेदों में उपनिषदों में जिस ब्रह्म की स्थापना की गई है वो तो ब्रह्म की अंगी कांति है अथवा ज्ञान है, वो भी परवर्टर रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज है। यथार्थ में ज्ञान नहीं है। शंकराचार्य जी ने जो कुछ कहा, व्हाट शंकराचार्य हैज टोल्ड अबाउट अद्वैतवाद आर मायावाद, क्वाइट फॉल्स एवरीथिंग, इट इज नॉट वैदिक ब्रह्मवाद। ब्रह्मवाद उन्होंने कहा जी ब्रह्मानंदवाद तुम क्यों कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, यदि ब्रह्म निर्विशेष है, ब्रह्म का ही रूप कोई नहीं है, ब्रह्म को कोई ज्ञान नहीं है, निर्विशेष अरूप निर्गुण निरंजन अनादि निशक्ति निर्गुण तुम कह रहा है, तो ब्रह्म परमा कैसे आनंदमय हुआ। हम कहते कि वो पखानामय और दुर्गंधमय है, ही इज लाइक स्टूल नॉट आनंदमय। वेरी गुड पॉइंट, ही ट्राइड हार्ड सो मच, उसने बहुत ही चेष्टा की जो ब्रह्म आनंदमय है। गुरु जी ने कहा तुम आनंद किस लिए कह रहे हो, यदि कोई मधु है और मधु में चींटी उसको चखने के लिए गई और उसी में लटपट होकर मर करके उसी में मधु ही बन गई, तो फिर मधु का आस्वादन नहीं कर सकती, और वो चींटी फिर आकर के नहीं कहेगी जय मधु खूब टेस्टफुल और मधुर है। वैसे ही यदि कोई पैखाना बन जाए तो पैखाना बन जाने के बाद में उसे दुर्गंध भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूं कि वो पैखानामय और तुम्हारा आनंदमय दोनों एक ही है। हजार चेष्टा किया उसको साबित करने के लिए जो ब्रह्म आनंदमय है, किसी प्रकार से वो साबित नहीं कर सका। गुरु जी ने कहा ये सब दुर्गंधमय है और वो आनंदमय नहीं है। उसके जिस विषय को उठाए उसका खंडन करके काट दे गुरु महाराज जी। जब वो निशक्ति है, और उन्होंने कहा तुम कहते हो कुछ सर्वम खलिदम ब्रह्म, यह गलत है तुम्हारा कहना। क्यों, उन्होंने कहा जो सर्वम खलिदम ब्रह्म तत्तम असि आम ब्रह्मास्मि जो कहते हो, तो एक तरफ तो तुम कहते हो कि सर्वम खलिदम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है, फिर जगत को तुम झूठा क्यों कहता है कि जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ही वो ना पर क्यों कहता है? यदि सभी कुछ ब्रह्म है जो कुछ हम देखते हैं, तो ये मिथ्या कैसा हो गया? एक भी उत्तर नहीं दे सका, लौट करके चला गया। इस तरह से हम देखते हैं कि एक बार कैसे संप्रदाय की रक्षा की गुरु जी ने, निम्बार्क संप्रदाय के यहां एक व्यक्ति ने लिखा, उसके जो विद्वान है एक, अब तो वो रहे नहीं, उन्होंने लिखा, चैतन्य महाप्रभु केशव काश्मीरी के शिष्य थे। एनी पर्सन डिवोटी ऑफ सम निम्बार्क संप्रदाय, ही रोट इन हिज पेपर मैगजीन दैट चैतन्य महाप्रभु वाज द डिसाइपल ऑफ केशव काश्मीर। उन्होंने कहा, गुरु महाराज जी इसको सुनकर के बड़े क्रोधित हो गए और साथ ही साथ उन्होंने मुझको कहा कलम उठाओ, और हमको उन्होंने डिक्टेशन आरंभ दिया। उन्होंने कहा कि जगत में निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, यह झूठा कल्पित निम्बार्क है, बल्कि चैतन्य चैतामित इत्यादि ग्रंथों में यह लिखा गया है, केशव काश्मीरी चैतन्य महाप्रभु से पराजित होकर उनके द्वारा कृष्ण मंत्र ग्रहण करके वहां से आया और यहां पर मथुरा में वो अपना भजन साधन करता था। सारों तरफ लिखा, महाप्रभु जी ने कहा विद्या का कार्य ये नहीं है कि सबसे तर्क वितर्क करे, विद्या का कार्य है वो भक्ति, भगवान की भक्ति करे, इसी में जीवन सफल है। इसलिए सब लोगों को भगवान का भजन करना ही यही विद्या का चरम सार है। उन्होंने कहा ये निम्बार्क नाम का कोई संप्रदाय नहीं, और किसी व्यक्ति ने अपने भाष्य में या कहीं भी निम्बार्क शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया है, उनका कोई वेदांत का ग्रंथ नहीं है, एक जाली पारिजात भाष्य उन्होंने लिखा, वो भी जालियात है, वो भी ठीक नहीं है। साथ साथ में उन लोगों ने 2 लाख या कितने लाख रुपए का मानहानि मथुरा कोर्ट में किया, किंतु गुरुजी ने कहा, और जिन लोगों के वकील के पास में वो गए, उन्होंने कहा देखो गड़बड़ मत करना, कहीं केंचुआ को खोदने जाकर के कहीं वहां से विषधर सर्प ना आ जाए। तुम लोग भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज को नहीं जानता, वो बड़े बड़े तेजस्वी पुरुष हैं, तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे, उल्टा उनको देना पड़ जाएगा, इसलिए वो लोग केस नहीं किया और सुलहनामा करने के लिए राजी हुआ। इसी प्रकार से उनकी बोलती बंद की। सावरी सहजिया वो लोग प्रभुपाद के विरुद्ध लिखा, जो गौड़ीय मठ वाले रस नहीं जानते हैं कि रस किसको कहते हैं, और वो नीरस हैं, वो लोग रासलीला इत्यादि का अध्ययन और अध्यापना इत्यादि नहीं करते हैं। सुनकर के गुरु महाराज जी बड़े बिगड़े और उन्होंने 5 निबंध प्रबंध दिया, और उसी में उनके होश उड़ गए, उन्होंने केस किया, अंत में केस में भी उनको हार मानना पड़ा और गुरु जी के चरणों में शरणागत होना पड़ा। फिर उन्होंने संकल्प किया आज से इनके विरुद्ध में कभी कुछ नहीं लिखेंगे। इस तरह से जब जब हमारे संप्रदाय के ऊपर में ऐसी कुछ बातें हुई, गुरुजी उसी समय उठ खड़े हुए और हजारों कलम की मुख से उन्होंने सर्वत्र उन्होंने इसका प्रचार किया। उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं जिसमें कि हमारे परमाद्वैती महाराज ने बतलाया, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था, जब तक जगत में मायावाद रहेगा, अद्वैतवाद रहेगा, निर्विशेष ब्रह्मवाद रहेगा, तब तक भक्ति का प्रचार शुद्ध रूप में नहीं हो सकेगा, भक्ति के लिए विघ्न बाधा रहेगा। हमारे गुरु जी भी ऐसा करते थे और उन्होंने सर्वदा इसका खंडन किया मायावाद के विचारों का। उन्होंने जीव गोस्वामी के युक्तियों को अवतारणा कर मायावाद का हजारों रूपों में उन्होंने खंडन किया। उनकी लेखनी से जहां कोई प्रबंध निकलेगा उसमें मायावाद का जरूर उल्लेख रहेगा और उसका खंडन करते थे। श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की धारा में उन्होंने अपने संप्रदाय के लिए मायावाद में उन्होंने कहा मायावाद एक धोखा है। आज तक बहुत से मायावादी आचार्यों को वैष्णवों ने पराजित किया और उनको वैष्णव धर्म में दीक्षित किया। किंतु वैष्णव धर्म में दीक्षित कोई भी व्यक्ति आज तक किसी दूसरे धर्म में दीक्षित नहीं हुआ। रावण पक्का मायावादी था क्योंकि शक्ति को हरण करना चाहता था। कंस महा अद्वैतवादी था, वो शक्ति को कुछ न करके कृष्ण को मारना चाहता था। ये सब मायावादी हैं। हिरण्यकश्यपु मायावादी था, बहुत बड़े भारी विद्वान थे वो लोग वेदों के। रावण वेदों का बड़ा भारी आचार्य था, 10 मुखों से वेदों को वो उच्चारण करता था। किंतु सीता जी को चुरा लाया, उनके शक्ति का अपहरण किया, वो निर्विशेषवादी था। गुरु जी कैसे सुंदर सब विचार, और उसको रामचंद्र जी ने उसको ध्वंस किया था। इस तरह से हम देखते हैं कंस को भी कृष्ण ने ध्वंस किया। इस प्रकार से हम देखते हैं प्राचीन जितने लोग हारे हैं, समाप्त ब्राह्मण लोग केवल शंकराचार्य से हैं। कोई भी वैष्णव से विवाद उन्होंने नहीं किया। नवद्वीप में गए और वहां से लौट आए, नवद्वीप में कुछ प्रचार नहीं कर सके, किसी भी वैष्णव के साथ में उनका विवाद नहीं हुआ है। असल में शंकर जी शंकर थे, साक्षात शंकर भगवान के आदेश है। मायावाद का तात्कालीन प्रचार करने के लिए अवतरित हुए थे। उन्होंने वैष्णव के लिए एक भित्ति बनाई, इसीलिए उन्होंने लिखा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए ऊपर से यद्यपि मायावाद का प्रचार किया किंतु भीतर से वो पक्के वैष्णव थे, वैष्णवानां यथा संभो। इस तरह से हम देखते हैं कि शंकर संप्रदाय के जितने लोग हैं वो लोग में से बड़े बड़े पंडित लोग या तो मारे गए विष्णु के हाथों से या वैष्णव धर्म में पुनः दीक्षित कर लिए गए। किंतु आज तक वैष्णव में से कोई भी व्यक्ति मायावाद के द्वारा हारा नहीं, और उनको हराया ही और उनको अपने मंत्र में दीक्षित किया। कोई भी आज तक वैष्णव मायावाद में संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुआ। इस प्रकार से उन्होंने सत्ययुग से लेकर के कलयुग तक के समस्त इतिहास, उन्होंने दार्शनिक इतिहास और इस तरह से इतिहास सब अवतारणा कर इस चीज को सत्य रूप में करने की चेष्टा की है। उन्होंने केवल यही नहीं, दर्शन ही नहीं, रससाहित्य में हम देखते हैं उन्होंने अपने गुरु जी के लिए एक आरती लिखी है, जिसको मायापुर के आचार्य जी ने इसका देख करके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए, भाषा पर मुग्ध हो गए, और उन्होंने अंतिम लाइन जिसमें गुरु जी का नाम है उसको छोड़ करके और उसमें चालू कर दिया आरती, जिसको हम लोग आरती करते हैं। बहुत ही सुंदर भक्ति विनोद धारा, ये क्या है, जलशंख धारा, ये भक्ति विनोद जी की धारा है। पांच प्रदीप, ये क्या है, पंचरस की सेवा। इतनी सुंदर व्याख्या, उसमें दर्शन और रस दोनों मिले हुए, ऐसा विचित्र मिलन बहुत कम देखा जाता है। उन्होंने राधा कृष्ण जुगल की आरती लिखी, इतना सुंदर जो आज तक किसी भी आरती में नहीं देखा गया, मंगल आरती का। उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखित कृष्ण भावनामृत और गोविंद लीलामृत का सारा रहस्य ही उसमें बड़े रहस्यिक ढंग से उसमें उन्होंने परिवेशन किया है। जो कोई भी व्यक्ति, रसिक व्यक्ति, भाव भक्ति देखेगा तो उस बिना मुग्ध हुए रह नहीं सकता। उसके एक एक शब्दों में न जाने क्यों कौन से भाव सब छिपे हुए हैं। उन्होंने राधा विनोद बिहारी अष्टक एक लिखा संस्कृत में, संस्कृत के भी विद्वान उन्होंने लिखा, उसके कितने गुण रहस्य हैं, जिसका पहला श्लोक यह है, क्या है, राधा चिंता निवेशेन जस्य कांतिर विलोपिता श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लिंगित विग्रह। मैं वंदना करता हूं किनकी, क्या कहे, राधा लिंग बंद करते सारे, अच्छा बंद कर, हैं? त राधा चिंता निमेशेना जस्य कांति बेलोपिता श्री कृष्ण चरणम बंदे राधा लिंग विग्रहम। फर्स्ट इसका यह श्लोक है, उसके बाद में दूसरा बतला रहे हैं। मैं राधा लिंगित विग्रह को मैं प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि इसमें एक भीतर निहित भाव है। कृष्ण चिंता क्या, राधा चिंता निमेशेन। सब लोग ये जानते हैं कि कृष्ण हमारे आराध्य हैं। कृष्ण के विरह में गोपियां रोती और तड़पती हुई उनको खोजती हैं। चैतन्य महाप्रभु जी की धारा का यह विचार नहीं है। कृष्णचंद्र स्वयं राधा जी के लिए ढूंढे और उनके लिए रोज, ओ राधिके तुम कहां हो। इसलिए कृष्ण राधा की चिंता में निमग्न होकर के अपने श्यामल कांति को छोड़कर के गौ कांति के द्वारा आच्छादित हो गए। ऐसे जो आच्छादित जो कृष्ण है, राधा आलिंगित जो विग्रह है, ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। दूसरा उसका यह है क्या, क्या भेदाभेद प्रकाशकम, मुझे याद नहीं किया। उसमें उन्होंने अपने जितने विचार हैं अपने संप्रदाय के, हमारा विचार अचिंत भेदाभेद है। कृष्ण के साथ भगवान के साथ में हमारा भेद भी है अभेद है। किस रूप में भेद और किस रूप में अभेद, इसको चैतन्य महाप्रभु जी ने सबसे पहले हमारे सनातन इत्यादि गोस्वामियों को दिया, जिसको पीछे से श्रील जीव गोस्वामी ने और श्रील बलदेव विद्याभूषण ने इसको प्रकाशित किया। इसके पहले शंकराचार्य जी ने बतलाया जब जीव ही कृष्ण है, यह जगत मिथ्या है। रामानु ने बताया विशिष्टाद्वैत बात, एक ही वस्तु है जगत और जीव, उसका विशेषण मात्र है, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं। और आचार्यों ने बताया, किंतु चैतन्य महाप्रभु के अनुगत जीव गोस्वामी ने इसको इस रूप में प्रकाशित किया, एकम एव परतत्वम स्वाभाविक अचिंत सत्या जीव प्रधान चतुर्धा अवशिष्यते। और उसका उपमा देकर के बताया, एक ही परतत्व है, अचिंत शक्ति के प्रभाव से वो परतत्व सूर्य स्वरूप और उसके अवतार समूह जीव और प्रधान माया के रूप में वो प्रकाशित है। फिर भी उनमें भेद भी है अभेद, किंतु मन की बुद्धि के द्वारा उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ये हमारे गुरु परंपरा के ग्रंथों के अनुसार में इसको समझा जा सकता है, जिसको अमना वाणी कहते हैं, उसके द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। मन की बुद्धि के द्वारा उसको नहीं समझा जा कि अचिंत भेदाभेद किसको कहते हैं। इसके पहले किसी भी आचार्य ने इसको नहीं कहा अचिंत भेदाभेद, किंतु पीछे से सब आचार्यों ने इसको माना। मध्वाचार्य ने भी इसको माना है अचिंत भेदाभेद, और लोग मानने के लिए बाध्य हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का यह विचारधारा हमारे गुरु जी ने श्रील प्रभुपाद के बाद में जगत में उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने ये कहा क्या, सत्य सेवक संभोगे द्वैर भेद कुतो भवे विप्रम मेरे तु सर्वस्य भेद सदा विवर्धते। और चिल्लीला मिथुन तत्व भेदाभेद अचिंतकम शक्ति शक्ति मतौर ऐक्यं जुगपत वर्तते सदा इत्यादि। बहुत ही सुंदर उन्होंने कहा, अपने यहां पर सफेद कृष्ण क्यों, राधा जी सफेद कृष्ण सफेद, गुरु जी ने इसी के उत्तर में ये सब लिखा। जो रसिक भाव नहीं है नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा ये राधा जी की चिंता करते 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 कृष्ण तन्मय होकर हो गए, और उसी समय कृष्ण का यह रूप श्याम रूप आच्छादित हो गया राधा कांति के द्वारा। यह इमली तला की घटना है। रासस्थली के बाद में कृष्ण रासस्थली से अंतर्ध्यान हो जाने के बाद में कृष्ण इमली तला में थे, श्रृंगार बट के बाद में और कृष्ण ही खोज रहे हैं राधा जी को जो कहां गई, और चिंता करते 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 गौड़ वर्ण के हो गए। ये सब पुराणों में है, कोई कह रहे थे जैसे इसका उल्लेख कहां है, इमली तलाक का प्रसंग जहां पर वर्णन है शायद पद्म पुराण में, वहां पर इसका ये है। और बृहद भगवतामृत में सनातन गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है, साथ साथ में श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत में इसका वर्णन किया जैसे श्याम गौर हो गए। विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की स्वप्न विलासामृत अष्टक में यह स्पष्ट रूप से दिया गया है, इसलिए ये गुरु महाराज जी का यह तत्व और ये उन्होंने वर्णन किया। और मध्यों को यहाँ पर बीच में खड़ा कर दिया, असल में मध्वाचार्य से और उन संप्रदाय से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। यदि गुरु जी उस समय नहीं होते तो उस समय चारों तरफ में यहाँ वृंदावन के जितने भी गोस्वामी लोग हैं, कुछ को छोड़कर यहाँ तक कि राधा कुंड के सहजिया लोग, नवदीप के सहजिया लोग और सभी लोग इस पक्ष में थे। ये चैतन्य महाप्रभु जी ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है और वही इसके मूल आचार्य हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहीं 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 कहा है, जो लोग ऐसा कहते हैं वो कली के शर हैं, वो भंड हैं, उनके विचार ठीक नहीं है। जिसको हमारे कवि कर्णपुर जी ने, जिस विचार को हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने सत क्रिया सार दीपिका में कहा है, गुरु परंपरा दिया है, उसी को हमारे कवि कर्णपुर ने दिया है, उसी को बलदेव विद्याभूषण ने दिया है। विशेष करके जीव गोस्वामी ने अपने संदर्भ में इस चीज को स्थापना की, जो वृद्ध वैष्णव इत्यादि के द्वारा नाम लेकर के परंपरा के द्वारा मध्व और उनकी परंपरा के जो व्यास राय व्यास तीर्थ सबका नाम देकर के कहा, जो हम उनके अनुगत हैं, उनके विचारों को हम ग्रहण करते हैं। महाप्रभु जब दक्षिण में गए कहीं भी कृष्ण की उपासना नहीं देखी, केवल उडुपी में कृष्ण की उन्होंने प्रतिष्ठा देखी और देख करके भाव में विवरो करके नित्य करते करते जमीन पर लोटपोट करने लगे। और उन्होंने मथन जो करने वाले जो कृष्ण मथन दंड के साथ में, उनको देखा जे यही कृष्ण के एक स्वरूप को ग्रहण करते हैं, इसलिए उस संप्रदाय के अंतर्गत उन्होंने वो हुए। ये बाई चांस नहीं, मध्वाचार्य मध्वेन्द्रपुरी पाद ईश्वरपुरी पाद और इसके बाद में अद्वैताचार्य जी नित्यानंद प्रभु जी और सब जितने भी हैं, जितने भी पूरी लोग हैं, ये सब उसी के अंतर्गत हैं, उसी संप्रदाय के अंतर्गत। और अद्वैताचार्य भी ईश्वरपुरी पाद जी के मध्वाचार्य मध्वेन्द्रपुरी पाद के शिष्य हैं। इसी तरह से वो जो गदाधर पंडित जी के गुरु जी पुंडरीक विद्यानिधि उसी संप्रदाय के अंतर्गत है। इसलिए बाई चांस ऐसा नहीं है, चैतन्य महाप्रभु भारतीय संप्रदाय के मायावादी सन्यासी नहीं है। मध्वाचार्य ने भी तो सन्यास लिया अद्वैतवादियों से, किंतु उसके गुरु को भी अपने गुरु को भी अपने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित करके और उनको भी अपना शिष्य बना दिया। महाप्रभु जी ने ऐसा ही किया था। इस तरह से हम विचार करके देखते हैं तो ये मध्व संप्रदाय की हम लोग शाखाएं, इसमें कोई हानि नहीं है। कृष्ण राम और महाप्रभु संप्रदाय की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य केवल मात्र नहीं है, भक्त नहीं है, इसकी तो प्रतिष्ठा उनकी शक्ति है या उनके आचार्य लोग करते हैं। महाप्रभु केवल आचार्य नहीं, वो संप्रदाय के सहस्त्र अधिष्ठात्री देवता है, उनके आराध्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु से संप्रदाय आती है, ये कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। इस चीज को हमारे गुरु जी ने तरह तरह से एक अचिंत भेदाभेद एक ग्रंथ लिखा, हम उसको प्रकाशित करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही उसमें सुंदर ये सब पॉइंट दिए गए हैं कि हम लोग मध्व संप्रदाय की शाखा के रूप में किस रूप में है उसमें दिया है। इस प्रकार से हमारे संप्रदाय की तरह तरह से उन्होंने रक्षा की है, हम उनके चरणों में आज सत बार दंडक प्रणति करते हैं, उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। हम लोगों के अंदर में भी यही तेजस्विता दे, ऐसी शक्ति दे जो उनके विचारों को हम लोग भी जगत में प्रचार कर सकें और भक्ति का हम लोग भी प्रकाश कर सकें। यही कह करके अपना वक्तव्य में समाप्त करता हूं।
श्लोक्षूर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशा कुलपतुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुर्भ्यैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदावी तुलसी दिव्री प्रियावी केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। सर्वाग्नि अतिथि पावन परमारक्षम श्री गुरुपाद। आज जो महापुरुष का तिरुभाव तिथि, उन्होंने हमारा शिक्षा गुरु नित्यल्ला प्रविष्ट विष्णुवा समाज भक्ति प्रज्ञान के सब स्वामी महाराज, अब तो आप उनका बारे में आप लोग श्रवण किया। ये लोग अगर नहीं आते तो एक महाप्रभु का जो अतुलनीय शिक्षा, महाप्रभु का जो महावदन्यता, ये जगत में किसी को मालूम नहीं पड़ता। ये लोग जब प्रचार किया था, एक तरफ से नहीं चारों ओर से विरोध किया था, ऐसा कि गौड़ीय मठ को कोई मकान भी कह रहे नहीं देना, इसमें भी किया था। गौड़ीय मठ का ये जो नवद्वीप धाम परिक्रमा, इसको भी बदल दिया। गौड़ीय मठ जो कहते हैं भगवान का विग्रह दिखाकर पैसा नहीं लेना, इसलिए गौड़ीय मठ का विरोध सब करने लगे, लेकिन तमाम विरोध को ये लोग सब आक्रमण को खत्म कर दिया। एक नहीं, विभिन्न भाषा में, पत्रिका में, प्रचार द्वारा विभिन्न रूप से ये प्रचार करके एक गौड़ीय मठ को स्थापन किया, महाप्रभु को शुद्ध विचारधारा को जगत में स्थापन किया। स्थापन सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें भी यह किया, ये कहां कहां कितना बड़ा विद्वान, ये सब को जवान बंद कर दिया। आजकल जो हम लोग प्रचार करता हूं, इसमें तो इतना बाधा नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन पहले था हर पॉइंट पॉइंट में लोग विरोध किया था, लेकिन ये विरोध को ये लोग लिया था, हमारा परम गुरुजी ने ये लिया था, ये अनुकूल रूप से तत्तेनुकंपा विचार से सबको समझा, ये जो विरोध करता है ये हमारा लाखों रुपया का काम कर देती है। ये जो पेपर में आ रहा था, तभी बोला ये लाखों रुपया देने से पेपर में हमारा बात को नहीं देता था, लेकिन ये लोग दो ढील मारा, इसलिए तो इतना पेपर में फैला उतर के गौड़ी मठ को बात प्रचार किया। एक तरफ ने हर तरफ से, लेकिन ये सब जो आया था, जिनका बारे में आप लोग इतना देर तक सुना, ये सब महाप्रभु का प्रेरित ज्ञान, ये हमारा परम गुरु जी नित्यल्ला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने ये प्रचार करने के लिए रुचि नहीं रखा था, एकांत में भजन करने के लिए रुचि रखा था, लेकिन ये महाप्रभु का स्वप्नाभिषेक, पंचतत्व और उनका गुरुत्व का आज्ञा से ही प्रचार शुरू किया। उस वक्त उन्होंने सवाल रखा था कि मेरा कोई साधन नहीं, मेरे पास कोई आदमी नहीं, मैं कैसे प्रचार करूं, प्लस आदमी हम लोग भेजेंगे। उन्होंने कहा गया नहीं, सब आ गया, इसलिए उनका पास जो लोग आया, ये सब महाप्रभु श्री चैतन्य देव का प्रेरित ज्ञान, इसलिए सीमाविक शक्ति लेकर के आया, जहां जहां किया हरेक बातों में विरोध किया था, लेकिन कहां पर वो नहीं टिका। ये पहले सुना कि सहजिया लोग भी मायावती का साथ शामिल होकर के विरोध किया था, सहजिया मायावती जितना कुछ है, तो जो अपसंप्रदाय ऐसा कि ब्राह्मण समाज भी विरोध किया था, लेकिन वो किसी ने विरोध करके गौड़ी मठ का कुछ हानि नहीं कर पाया, बल्कि गौड़ी मठ का प्रचार का सौंदर्य बढ़ा दिया। किसलिए? ना भगवान का, तमाम प्राणी भगवान का शक्ति है, शक्ति का अंश है, इसीलिए ये शक्ति असत्यम से जीव ये कभी उनका महिमा का विरोध नहीं कर सकता। जब भी बाहर में विरोध का माफी मालूम पड़ता है, लेकिन उसमें उनका महिमा अच्छा तरफ से प्रकाशित होता है। जैसे हिरण्यकशिपु बाहर में विरोध किया, लेकिन उसमें भगवान को महिमा ही प्रकट किया, इसलिए उनका भगवान कलयुग में सन्यासी नहीं ऐसा किया, उनको भी लेकर करके ऐसा कर दिया, उनको भी कोर्ट में जाकर के अंडर चेकिंग देने पड़ा, माफी मांगने पड़ा। इस माफी एक गौड़ी मठ हिसाब किया था, इसलिए एक भगवान के लिए भक्ति का 64 किस्म का अंग है। इसमें एक है कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, भगवान के लिए अखिल चेष्टा, ये भगवान के लिए जो अखिल चेष्टा भक्ति का जो सामान्य लक्षण ऋषिकेन और ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, ये तमाम इंद्रिय से इंद्रिय का अधिपति भगवान को सेवा का जो आदर्श एक गौड़ीय मठ ही स्थापन किया। इसका पहले ये तमाम इंद्रियों से भगवान का सेवा का आदर्श स्थापित नहीं था, देखने नहीं मिलता, सब इंद्रियों को लगाया भगवान को सेवा में। नरोत्तम ठाकुर उनका प्रचार में भी बोला, उन्होंने भी कीर्तन में बताया, काम कृष्ण परमार्पणे क्रोध भक्त देशी जने लोभ साधु संगे हरि कथा, विचार देखा ऐसा ऐसा, लेकिन ये गौड़ीय मठ आचरण करके इस तमाम को जवान बंद करके ये महाप्रभु का असमर्थ विचार जगत में स्थापन किया। अब यही विचार स्थापन करने के लिए यही सब महापुरुष एक एक दिक्पाल था। ऐसे कि जब एक चांद का जी जो महाप्रभु का भक्त बना था, उनका जो समाधि उनके लिए भी विरोध किया था, लेकिन उनको भी ऐसा हाल हुआ आइंदा में कैद में जाने पड़ेगा, लेकिन हमारा परम गुरुजी ने ये मौत से ही उनका तरफ से मामला करके उनको छोड़ा दिया। इसका क्या साबुत किया है लोग, ये जगत का किसी का प्रति गौड़ीय मठ का विद्वेष नहीं है, ये तमाम प्राणियों को सुधार के उनका मंगल के लिए विधान किया, अर्थात साधु का जो लक्षण साधु का जो लोग दयालु, ये दयागुण एक साधु के अंदर में ये लोग स्थापन किया, विरोध करके भी विरोधी को भी दया कर दिया। इसमें भी ये लोग उनका इसमें से इन्होंने अग्रणी थे, वही जो हुआ था इस तमाम देखभाल इन्होंने किया था। इसमें ये नहीं, देखने में तो ऐसा था बाहर के विचार में दुर्बल है, लेकिन एकदम शेर कमाफी ताकत, जहां विरोध है वहीं सबसे आगे है। इसलिए ना हमारा सिद्ध वस्तु इनको लिए जो कुछ करना इसके लिए तैयार, शुद्ध विचारधारा का कोई विरोध करे, जीव का प्रति विरोध नहीं है, उनका जो विचारधारा इनको शोधन करने के लिए एक कोशिश एक वैशिष्ट है। जगत का आदमी वो क्या करता है, विरोध करता है विरोध के लिए, ये लोग उसके लिए नहीं विरोध, विरोध किया है उनका मंगल के लिए। ये देखना, इसलिए ये गौड़ीय मठ जो लोग उनका विरोध किया, इसमें यह भी वैशिष्ट करना है उनको सुधारने के लिए, उनका विरोध के लिए विरोध नहीं, सुधारने के लिए, उस कल्याण के लिए। इसलिए ना ये जब तक जीव भगवान का तरफ नहीं जाएगा तब तक ये चतुर्दश ब्रह्मांड में भटकते ही रहेगा, इसका कभी मंगल नहीं होगा। कविराज गोस्वामी ऐसा हमारा शास्त्र में भी बताया, क्या ना चारी वर्णश्रमी यदि कृष्ण नहीं बजे सकर्म करिलोषे रौरवे परिमजे। इसीलिए ये जो सधर्माचारी ये लोगों को भी वही कृष्ण वैश्य में स्थापन करने के लिए ये लोग अप्राण चेष्ट किया। अवश्य किस्मा भी चोर चोरी करता है, चोरी किया मठ का चीज पकड़ा गया, देखा है दुखी है, साथ में उसको आधार चोरी किया था, साथ में चावल भी दे दिया, एक गरीब है कैसे ये करेगा, इधर इतना दाता है लेकिन हरि भक्ति का जुरा से इधर से उधर करे उसमें लिए विरोध, वो नहीं सहन करेंगे। गीता में जो बताया जानिशा सर्वभूतानां तस्संग जागृति संयमी जिस संग जागृति भूतानां सा निशा आवश्यती मुनि। ये जो है ये मुनि का लक्षण एक गौड़ीय मठ में देखा जाता है। ये जगत का विषय में जगत जो कुछ बिगड़ता है इसलिए ये लोग उदासीन है, लेकिन परमार्थ का किंचित भी जुरा से भी कोई इधर से उधर हो जाए इनके लिए लोग बहुत जागृत है, वहां वो लोग जागृत है, जगत के विषय भी जान रहा हूं। ये वैशिष्ट है गौड़ीय मठ का, और यही महापुरुष लोग स्थापन करके दिया। अभी दुर्दिन आया है, इसका अंदर में से वो आ जाता है, कोली विभिन्न रूप से आक्रमण कर रहा है, अगर इससे बचना है तो यही महापुरुषों को क्या करने पड़ेगा, ये लोग उनको पुकारने पड़ेगा, और उनमें उनका जो रास्ता बता के गया जो मार्ग दिखाया उसी को अनुसरण करने पड़ेगा निर्बुल होकर, नहीं तो इससे बचना मुश्किल है। और वो लोग जो हम लोग उनके लिए मेहनत करके गया, अगर उनका स्थान पर रहते हुए वो लोग उनका अनुगत्य का अभिमान करते हैं, जब इससे अलग हो जाए इससे दुर्भाग्य का बात और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जैसे ये लोग उनको स्मरण करेंगे, ये लोग उनका कृपा प्रार्थना करेंगे, साथ ही साथ ये लोग उनका जो उपदेश जो लेख इसको पालन करने के लिए भी कोशिश करेंगे। आप लोग इतना देर तो किया, मैं लेट में आया इसलिए मैं खेद प्रकट करता हूं, क्योंकि आने में देर हो गया विशेष कारण से, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। वंशा दिवा सिंधु भयव पतितानांग पावन। बस
अभी हम लोग पुष्पांजलि देने जाएंगे, नाउ यू आर गोइंग टू गिव पुष्पांजलि देयर। पूज्य बाद पुरी महाराज इज देयर, बट पीछे हम लोग सुनेंगे। और महाराज जी का जो भाषण बहुत सार्वभौमिक हुआ, यू विल ट्रांसलेट इन इवनिंग फॉर ऑल। नाउ यू आर गोइंग टू गिव पुष्पांजलि इन द लॉर्ड फीट ऑफ आवर गुरुदेव।